ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल नमो ऐप के माध्यम से दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सरकार कल नई दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाएगी और भूमिगत जलाशय तथा बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण राजधानी के कई इलाकों में अगले 2 दिन पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल पार्टी के चुनावी प्रचार अभियान के अंतर्गत नमो ऐप के माध्यम से भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत मेरा बूथ सबसे मजबूत नारे के साथ होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा और मतगणना 8 फरवरी को होगी। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 2 साल में राजधानी में कई झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में करीब 12 झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त किया गया है और भाजपा ने देश भर की कई अदालतों में राजधानी से झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की भी मांग की है।
हर जगह लाखों लोगों को बेघर करने का काम दिल्ली में केंद्र सरकार ने किया और तमाम कोर्टों के अंदर मुकदमे केंद्र सरकार द्वारा डाले गए हैं, जहां पे इन लोगों की जे क्लस्टर्स को डिमोलिशन करने की मांग केंद्र सरकार करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहूंगा कि अगर वो इन लोगों के हितैषी हैं तो जितने भी उनके मुकदमे वो सारे के सारे मुकदमे अगले 2 दिन के अंदर वापस लिए जाएं।
इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी से नाराज हैं। बिजवासन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने रहायशी इलाके और झुग्गी झोपड़ियों में पेयजल को लेकर किए वादे पूरे नहीं किए।
जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हैं, वहाँ भी जब दौरे हो रहे हैं लोगों में काफी गुस्सा है और वो दुखी भी बहुत हैं कि जो वादे उनको किए गए थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए। पानी का जो मुद्दा था कि हर घर को पानी देंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू है आज भी। और सड़क नालियां बिजली वही सारे कॉमन मुद्दे ही हैं जो 2015 में थे, वो आज भी वही मुद्दे हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के अराजक तत्वों ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से मारपीट की है। मुख्यमंत्री ने चुनाव अधिकारियों से इस घटना पर कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान अर्धसैनिक बल की तैनाती की भी मांग की। शिवसेना शिंदे गुट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को यह समर्थन का पत्र सौंपा। उन्होंने पत्र में कहा कि शिवसेना की दिल्ली इकाई भाजपा की राज्य इकाई के साथ मिलकर चुनाव अभियान करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और स्टार प्रचारक रोड शो, रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
आज राजधानी में आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस के साथ साथ कई दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए पदयात्राएं और जनसभाएं की। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज शकुर बस्ती में पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र जैन के लिए रोड शो किया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए जनसमर्थन रैली की। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पटेल नगर, शालीमार बाग और राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए जनसभाएं की। इसके अलावा सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के समर्थन में बादली विधानसभा के भगवानपुरा में जनसभा की। इस विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किए गए वादों के बाद आज भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र का दूसरा भाग पेश किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा और मतगणना 8 फरवरी को होगी। अमन यादव के साथ अनुपम मिश्र, प्रादेशिक समाचार, दिल्ली।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों पर लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में प्रस्तुत है बाबरपुर विधानसभा सीट पर हमारे संवाददाता अमन यादव की रिपोर्ट।
उत्तर
उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले की बाबरपुर सीट पर बीते 10 वर्षों से सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस सीट से लगातार 2 बार अपनी जीत का परचम लहराया है। पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा के नरेश गौड़ को 33,000 से अधिक मतों से हराया था। श्री राय के अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन और मतदाताओं के बीच बेहतर छवि को देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने 4 बार के पूर्व विधायक नरेश गौड़ का टिकट काटकर नए चेहरे अनिल वशिष्ठ को इस सीट पर अपनी किस्मत आजमाने का मौका दिया है। उधर कांग्रेस ने सीलमपुर के पूर्व विधायक हाजी इशराक खान को इस सीट पर चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे इस सीट पर एक दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। बाबरपुर में कुल 2,16,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें करीब 1,14,000 से अधिक पुरुष और 1,00,000 से अधिक महिला वोटर हैं। मिली जुली आबादी वाले बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में मध्यम से लेकर पौश इलाके तक आते हैं। इनमें कूलर जैकेट पतंग के लिए प्रसिद्ध जाफराबाद मार्केट, नवीन शाहदरा, बाबरपुर, बलबीर नगर, शिवाजी पार्क और कबूल नगर जैसी कॉलोनियां शामिल हैं। इस सीट पर सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक जाम, अपराध और पार्किंग की कमी लोगों की सबसे प्रमुख समस्याएं हैं। इस सीट पर कुल 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी अपनी जीत का रथ जारी रखती है या भाजपा और कांग्रेस इस रथ को रोकने में कामयाब होती है।
दिल्ली में 70 सीट पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लिए जाने के बाद कुल 699 प्रत्याशी मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने का कल अंतिम दिन था। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 23 प्रत्याशी हैं, जबकि पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीट पर सबसे कम 5-5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 1,522 में से 487 नामांकन खारिज कर दिए गए। दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता और सक्रिय लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कॉलेज की छात्र परिषद ने मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में सार्वजनिक सेवा, सामाजिक योगदान में युवाओं की भागीदारी और प्रमुख कानूनी और नागरिक जिम्मेदारियों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का विषय युवाओं को सार्वजनिक सेवा और समाज में योगदान के लिए प्रेरित करना था। राजधानी में लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अब तक 439 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने 238 गैर लाइसेंसी हथियार, 332 कारतूस, 38,000 से अधिक लीटर शराब, 17 करोड़ रुपए की लगभग 105 किलोग्राम मादक पदार्थ, 3,22,00,000 से अधिक की नकदी जब्त की। पुलिस ने बताया कि 15,000 से अधिक लोगों को आबकारी कानून और संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। इस बीच दिल्ली नगर निगम ने आज 5,000 से अधिक होर्डिंग, 26,000 से अधिक बैनर पोस्टर और 19,000 से अधिक राजनीतिक दलों के झंडे हटाए। निगम ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगे लगभग 1,000 साइन बोर्ड भी हटाए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजनिवास में एक समारोह में न्यायमूर्ति उपाध्याय को शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सरकार कल नई दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाएगी। ये बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों का एक दशक पूरे होने का प्रतीक है। एक रिपोर्ट।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारी, छात्राएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भाग लेंगी। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ कल से 8 मार्च तक मनाई जाएगी। इसका समापन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया जाएगा। इसी तरह के कार्यक्रम राज्य और जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लैंगिक असंतुलन और घटते बाल लिंग अनुपात के गंभीर मुद्दे पर प्रतिक्रिया के रूप में 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
इस बीच सरकार ने कहा है कि देश भर में 4 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के अनुसार माता पिता किसी निर्धारित वाणिज्यिक बैंक की शाखा में या किसी डाकघर में कन्याओं के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता 250 रुपए के जमा के साथ खोल सकते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना पर फिलहाल 8.2% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण राजधानी के कई इलाकों में कल और बृहस्पतिवार को पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार मुखर्जी नगर, बुराड़ी, संतनगर, नथुपुरा, कमल विहार, मुकंदपुर पार्ट एक और दो, जगतपुर, हरित विहार और उसके आसपास के इलाके, सुभाष नगर तथा बोरीवाला बाग एसटीबीपीएस में कल जलापूर्ति बाधित रहेगी। वहीं विपिन गार्डन, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, विपिन गार्डन एक्सटेंशन, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, भगवती गार्डन एक्सटेंशन, जैन रोड, शीशा गोदाम रोड, सी ब्लॉक रामा पार्क, भगवती गार्डन और दीवान एस्टेट लक्ष्मी विहार में बृहस्पतिवार को जलापूर्ति बाधित रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन होगा। इसमें संविधान लागू होने के 75 वर्षों और जन भागीदारी पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कर्तव्य पथ पर परेड में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ साथ इंडोनेशिया का 160 सदस्यों का मार्चिंग दस्ता और 190 सदस्यों का बैंड दस्ता भी भाग लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय पर केंद्रित विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की 31 झांकियां भी कर्तव्य पथ पर निकलेंगी। ये भी कहा गया कि परेड में शामिल दो झांकियों में संविधान के 75 वर्षों की गाथा को प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में विशेष संदेश पट्टिका वाले गुब्बारे भी उड़ाए जाएंगे। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
परेड में संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य समूह जयति जय मम भारतम में विविध नृत्य रूपों का प्रदर्शन करने के लिए देश भर के कलाकार अभ्यास कर रहे हैं। हमारी संवाददाता पल्लवी परमार ने आज गणतंत्र दिवस परेड 2025 में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे कलाकारों से बातचीत की।
मेरा नाम दशरथम नमचोम है, मैं अरुणाचल प्रदेश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे रिपब्लिक डे में इस कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जितना भी आर्टिस्ट है पूरी भारत का सब एक इकट्ठा करा करके एक बड़ा सा निकुट बनाने जा रहा है रिपब्लिक डे में, तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीकॉक डांस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश।
राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 2 फरवरी से 30 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। लोग सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक उद्यान जा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से बुकिंग की जा सकती है। उद्यान में बुकिंग और प्रवेश निःशुल्क रहेगा। राष्ट्रपति भवन 6 मार्च से 4 दिवसीय अमृत महोत्सव भी आयोजित करेगा। इस महोत्सव में दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठी परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे ऑटो एक्सपो 2025 का कल अंतिम दिन है। ऑटो एक्सपो में देश भर से वाहन प्रेमी बड़ी संख्या में नए और उन्नत वाहनों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान वाहन प्रेमियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक और विंटेज कार आकर्षण का केंद्र है। लोग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इस ऑटो एक्सपो में गाड़ियों को देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में आज सवेरे और शाम को ठंड महसूस की गई। हालांकि आज दिन में धूप खिली रहने से लोगों को सर्दी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की धुंध छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल नमो ऐप के माध्यम से दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। सरकार कल नई दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाएगी और भूमिगत जलाशय तथा बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण राजधानी के कई इलाकों में अगले 2 दिन पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।